नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ये सभी प्रवचन माँ सयामा जी के स्वर्गीय पति सयाजी उचित्तिन द्वारा अंग्रेजी में रचित तथा डॉक्टर विलियम प्रूइट द्वारा संपादित किए गए थे। कालांतर में इन्हें श्री रॉजर बिशॉफ द्वारा पुनर्नियोजित तथा मेरे अर्थात डॉक्टर केदारनाथ द्विवेदी द्वारा हिंदी में अनुवादित किया गया है। अपना व्यवहार ऐसा करें जिससे आपके विवेक में वृद्धि हो। योगा वे जायति भूरि, अयोगा भूरि संखयो एवं द्वेधा पथम यत्वा भवाय विभवाय च तथा तानं निवेशेय यथा भूरि पवद्धति। ध्यान के अभ्यास से प्रज्ञा उत्पन्न होती है, उसके अभाव से प्रज्ञा का क्षय होता है। उत्पत्ति और विनाश के इन दो प्रकार के मार्गों को जानकर अपने आप को इस प्रकार विनियोजित करें जिससे प्रज्ञा की भरपूर वृद्धि हो। धम्मपद गाथा 282। हम यहाँ एक साधना शिविर में एकत्रित हुए हैं। आपने पूरे 10 दिन का एक शिविर अर्थात कोर्स या अध्ययन पाठ्यक्रम करने का संकल्प लिया है। जिस प्रकार भगवान बुद्ध के समय आर्यजन ऐसी साधना करते थे, उसी प्रकार आप भी अपना घर, अपना काम, अपनी व्यस्त गतिविधियों और अपने प्रिय परिवार को छोड़कर यहाँ जागृति प्राप्त करने की आशा से एकांतवास के लिए आए हैं। त्रिरत्न की शरण। कार्यक्रम का एक आवश्यक अंग त्रिरत्न की शरण लेने की कुछ प्रारंभिक औपचारिकता है, जिसके द्वारा साधकों का सम्यक जागृति अर्थात बुद्ध की ऊर्जा एवं शक्तियों से संगत या संपर्क हो सके। त्रिरत्न का अर्थ 3 रत्न है। प्रथम बुद्ध या जागृत, द्वितीय बौद्ध धर्म या सत्य, तथा तृतीय संघ या वह समुदाय जो उनके प्रशिक्षण को जीवित रखे हुए है। प्रशिक्षण काल में सुरक्षा एवं मार्गदर्शन के लिए भगवान बुद्ध एवं आचार्य को हमारे स्वयं के समर्पण द्वारा इस संगत या अनुकूलन की सतत निरंतरता बनी रहती है। अतः हम अपने शिविर अर्थात कोर्स का प्रारंभ बुद्ध अर्थात जागृत की, धर्म पाली में धम्म या बुद्ध द्वारा सिखाए सिद्धांत की, तथा संघ अर्थात उन लोगों के समुदाय जो इस शिक्षा का पालन कर रहे हैं और जिन्होंने 25 शताब्दियों से अधिक तक इस प्रथा को बनाए रखा है कि शरण लेकर करते हैं। हम अपने संरक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए स्वयं को बुद्ध एवं आचार्य को समर्पित करते हैं। हम नैतिक शिक्षा पद या शील ग्रहण करते हैं। अंत में हम आचार्य से आनापान साधना सिखाने का अनुरोध करते हैं। प्रथम रत्न बुद्ध हैं। बुद्ध शब्द का अर्थ है जागृत, जिसके अंतर्गत स्वतः जागृत का भाव भी समाया है, तथा बुद्ध जागृत अवस्था के साकार रूप हैं। गौतम तब तक साधना करने में सक्षम रहे जब तक उन्होंने अपना सारा अज्ञान नष्ट नहीं कर दिया और विश्व की चरम वास्तविकता को समझ नहीं लिया। यह चरम वास्तविकता अर्थात धम्म अर्थात परम सत्य दूसरा रत्न है। सत्य बुद्ध के प्रशिक्षण में चार आर्य सत्यों के रूप में अभिव्यक्त है। भगवान बुद्ध ने गवेषणा की कि सभी संस्कार पाली में संखार अर्थात अनुबद्धित स्थितियां असंतोषजनक हैं। इसके पीछे एक कारण है, इनका विकल्प असंस्कारित पाली में असंखत अर्थात अननुबद्धित अवस्था है तथा इस असंतोषजनक स्थिति से मुक्ति का मार्ग विद्यमान है। तीसरा रत्न संघ है। संघ का अर्थ आर्य संघ या आर्य पुरुषों के समुदाय से है। आर्य का अर्थ है वे व्यक्ति जिन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली है अर्थात जिन्होंने मुक्ति के चारों मार्ग पद एवं चारों फल पद को प्राप्त कर लिया है। इसके अंतर्गत सम्मुति संघ भी सम्मिलित है अर्थात उन भिक्षुओं का समुदाय जो इन शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं, इन्हें जीवित रखे हुए हैं और जो भी अपने दुख से बाहर निकलने के मार्ग की तलाश में है उन्हें उपलब्ध कराते हैं। हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में हमारा दृष्टिकोण एक सत्य की खोज कर रहे शोध वैज्ञानिक की तरह हो। प्रारंभ में वैज्ञानिक कोई कार्यवाही या काम चलाओ सैद्धांतिक परिकल्पना करता है और उसके पश्चात ऐसे प्रयोग निर्धारित करता है जिनसे वह परिकल्पना सिद्ध या असिद्ध हो सके। उन प्रयोगों से ऐसे परिणाम निकलेंगे जिनसे उसकी परिकल्पना या तो सिद्ध हो जाएगी या गलत साबित होगी। अतः आपको यहाँ बताई हुई बातों पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपसे केवल यही अनुरोध रहेगा कि आप अपने प्रयोग सही तरीके से करें जिससे उसके परिणाम आपके लिए लाभदायक हों। यदि कोई वैज्ञानिक अपने काम में सतर्क न हो और अपने प्रयोग सही तरीके से न करे तो उसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसकी परिकल्पना सही थी या गलत। कालामा सूत्र में बुद्ध ने कहा है, हे कालामाओं आओ, तुम किसी बात को केवल इसलिए मत स्वीकार कर लो कि यह बात अनुसूत है, परंपरागत है, इसी तरह कही गई है, हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार है, तर्क संगत है, न्याय सम्मत है, इसका आकार प्रकार सुंदर है, यह हमारे मत के अनुकूल है, इसे कहने वाले का व्यक्तित्व आकर्षक है, कहने वाला श्रवण हमारा पूज्य है। यदि तुम स्वयं जान जाओ कि ये बातें कुशल हैं, ये बातें दोषहीन हैं, इन बातों की बुद्धिमानों द्वारा प्रशंसा होती है, जब इन बातों को व्यवहार में लाया जाता है तथा इनका पालन किया जाता है तो ये कल्याण एवं सुख के लिए अनुकूल होती हैं, तब कालामाओं तुम्हें उनका अभ्यास कर उनके अनुसार जीना चाहिए। अंगुत्तर निकाय तिक निपात महावग के समुत्ति सुत्तम। उसी प्रकार सयाजी उबाखी ने अपने संबोधन बौद्ध धर्म है क्या, व्हाट बुद्धिज्म इज में कहा है, तो जब भी मैं दार्शनिक विषयों पर कुछ कहता हूँ कृपया आप मुझ पर तब तक विश्वास न करें जब तक मेरी बात पूर्णतः तर्कसंगत न लगे अथवा आप व्यावहारिक रूप से आश्वस्त न हो जाएं। इसीलिए हमारा भी यही कहना है कि जब तक हमारी बात व्यावहारिक न लगे अथवा इससे लाभ का अनुभव न हो तब तक आप हम पर विश्वास न करें। फिर भी प्रारंभ तो आचार्य बुद्ध में कुछ श्रद्धा या विश्वास के साथ ही करना होगा। हम एक कार्यवाही परिकल्पना करते हैं कि जागृति संभव है, कि सत्य का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, तथा कि ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने सत्य के ज्ञान को जीवित रखा है जिससे अन्य लोग लाभान्वित हो सकें। तब हम अपने प्रयोग निर्धारित करते हैं। पहला प्रयोग 5 या 8 शिक्षा पदों शील का पालन करना है। बुद्ध ने पाया कि यदि हम किसी प्राणी की हत्या, चोरी, यौन दुर्व्यवहार, झूठ तथा अन्य प्रकार की अनुचित वाणी और मादक द्रव्यों के सेवन से बचें तो हमारा चित्त शांत और स्थिर होने लगेगा। अतः हम पंचशील का पालन बड़ी ईमानदारी से करते हैं जिससे कि हम देख सकें कि इस नैतिकता या शील के अभ्यास से हमारे मस्तिष्क में क्या प्रतिक्रिया होती है। दूसरे प्रयोग का उद्देश्य चित्त को केवल एक ही आलंबन प्रदान करना है तथा हमारे लिए यह आलंबन श्वास है। यदि हम अपना ध्यान बारंबार, संभवतः हजारों बार श्वास पर वापस लाते रहें तो हमारा चित्त धीरे धीरे इस जागरूकता या संज्ञान पर स्थिर होने लगेगा। जैसे ही मन एक विषय से दूसरे विषय पर भटकना बंद कर देता है वैसे ही वह स्थिर होने लगता है और अंततः संभवतः अल्प अवधि के लिए ही सही एकाग्र चित्त भी। जैसे जैसे हम इस काम में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें जागृत अवस्था में पहुंचने के मार्ग पर प्रगति करने के लिए उपयुक्त ज्ञान भी प्राप्त होता रहेगा। किंतु लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ही हमारा विश्वास परिपूर्ण हो सकेगा। अतः जब हम बुद्ध, धम्म और संघ की शरण लेते हैं तो हम उनसे संबंधित गुणवत्ताओं की शरण लेते हैं, अर्थात जागृत स्थिति की गुणवत्ता की जो पूर्ण शांतिमय एवं आनंदमय है, 4 आर्य सत्यों की गुणवत्ता की जिनके द्वारा हमें मुक्ति मिलती है, तथा बुद्ध के सिखाए हुए मार्ग पर चलकर जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं उनके समुदाय के अच्छे, सही और विवेकपूर्ण आचरण की गुणवत्ता की शरण लेते हैं। आचार्य 3 रत्नों की शरण लेने के अतिरिक्त हम स्वयं को इस प्रशिक्षण काल तक के लिए बुद्ध एवं आचार्य के संरक्षण में डालते हैं। यदि हम वैज्ञानिक से तुलना की बात करें तो हम एक ऐसे शोध वैज्ञानिक की तरह हैं जो प्रशिक्षण में है। हमें एक ऐसे आचार्य की आवश्यकता है जो हमें दिखाए कि कैसे एक कार्यवाही परिकल्पना रची जाए, कैसे कोई प्रयोग निर्धारित किया जाए और कैसे परिणामों का मूल्यांकन किया जाए। यदि हमें सीखना है तो हमें सही तरीके से काम भी करना होगा और सही तरीके से काम करने के लिए हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमें उचित सलाह दे सके और हमारे प्रश्नों का उत्तर भी। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको अंधभक्त होने के लिए कहा जा रहा है, आपसे कुछ भी अनुचित करने के लिए नहीं कहा जाएगा, किंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि आचार्य हमें वही शिक्षा दे रहे हैं जिसका असंख्य लोगों ने अभ्यास किया है और उसे दुख से मुक्ति के लिए उपयुक्त पाया है, तथा आचार्य हमसे ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कह रहे हैं जो परीक्षित व विश्वसनीय न हो। तब हमने नैतिक शिक्षा पद अर्थात पंचशील या अष्टशील लिए। आनापान सिखाने के लिए औपचारिक अनुरोध भी किया। बुद्धत्व प्राप्त करने के तुरंत बाद बुद्ध ने सारे विश्व का सर्वेक्षण किया और पाया कि जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था उसे दूसरों को सिखाना सरल नहीं था। एक जागृत व्यक्ति के रूप में वे सारी इच्छाओं से परे थे और यद्यपि उनमें सभी दुखी प्राणियों के लिए असीम करुणा और अनुकंपा थी, किंतु यह शिक्षा दूसरों को दी जाए या नहीं, इस पर बुद्ध को हिचकिचाहट हुई। हमारे सौभाग्य से उसी समय ब्रह्मा सहमपति उनके पास पहुंचे और उनसे अनुरोध किया कि वे धम्म की शिक्षा दें। उस क्षण के पश्चात पुनः वे कभी भी नहीं हिचकिचाए। बुद्ध ने उस प्रत्येक व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जिसने उनसे हार्दिक अनुरोध किया। यही कारण है कि आपसे भी वही करने के लिए कहा गया। आपने देखा कि हमने हार्दिक अनुरोध की बात कही। सयाजी उबाखी बर्मा अर्थात म्यांमार में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। जब बर्मा को 4 जनवरी 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो सयाजी उबाखी महालेखाकार अकाउंटेंट जनरल नामान्वित हुए। उन्होंने अपने कार्यालय में काम करने वाले उन सभी व्यक्तियों को ध्यान लगाने की विधा में प्रशिक्षित किया जिन्होंने उनसे इसका अनुरोध किया, किंतु उन्हें पता था कि कई लोग सचमुच में ध्यान लगाना सीखने के लिए नहीं अपितु इसी बहाने उनकी कृपा दृष्टि द्वारा कुछ लाभ प्राप्त करने की आशा से अनुरोध करेंगे। अतः क्या वे वास्तव में ध्यान लगाना सीखने के इच्छुक हैं या नहीं, इसका पता लगाने के लिए उन्होंने उनको परखने का एक तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि वे ऐसे छात्रों की परीक्षा लेंगे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि भावी छात्रों को बताया जाए कि उन्हें महालेखाकार कार्यालय के चारों ओर दौड़ना होगा। यह दूरी लगभग 1 किलोमीटर की थी। कुछ को 1, कुछ को 2 और कुछ को 3 चक्कर लगाने होंगे। यह उनकी गंभीरता ईमानदारी की परीक्षा थी। यदि वे ऐसा करने के लिए तैयार हों तो इससे इस बात का संकेत मिलेगा कि उनमें अत्यधिक अहंकार नहीं है और काम करने के लिए जिस लचीलेपन की आवश्यकता है उसके साथ वे तैयार हैं। किंतु सयाजी उबाखी को कभी किसी को दौड़ाना नहीं पड़ा, क्योंकि जब यह बात फैल गई तो वे लोग जो गलत उद्देश्यों से वहां आने के इच्छुक थे उन्होंने न आने का ही निर्णय लिया। पोठिल थेर की कथा। सयाजी उबाखी प्रायः बुद्ध के समय के पोठिल स्थविर जो अत्यधिक स्वाभिमान से ग्रसित थे की कथा सुनाते थे। पोठिल एक अत्यंत विद्वान भिक्षु थे। पिछले जन्मों को मिलाकर वे 7 बुद्धों की छत्रछाया में प्रकांड पंडित भिक्षु की तरह रहे तथा गौतम बुद्ध के समय उन्होंने 500 भिक्षुओं को धर्म ग्रंथ पढ़ाया। बुद्ध ने देखा कि स्थविर पाली में थेर अब अपनी अंतिम मुक्ति हेतु परिश्रम के लिए तैयार हैं, किंतु उन्हें यह भी पता चला कि थेर पोठिल ने दुख से मुक्ति हेतु कार्य करने के विषय में कभी विचार भी नहीं किया था, अतः उन्हें उकसाना पड़ेगा। तत्पश्चात उन्होंने उनको तुच्छ अर्थात अनाड़ी या बुद्धिहीन पोठिल कहकर बुलाना प्रारंभ किया। बुद्ध उनसे कहते, आओ तुच्छ पोठिल, वंदना करो तुच्छ पोठिल, बैठो तुच्छ पोठिल, जाओ तुच्छ पोठिल। पोठिल ने अपने मन में सोचा, मुझे बुद्ध के सभी उपदेशों अर्थात त्रिपिटक तथा उनकी टीकाओं का ज्ञान है। मैं भिक्षुओं को प्रशिक्षित करता हूँ, फिर भी बुद्ध मुझे तुच्छ पोटिल कहकर बुलाते हैं। अतः उन्होंने निर्णय लिया कि अब वन में प्रवेश कर स्वयं को साधना में समर्पित करने का समय आ गया है, किंतु इस हेतु उन्हें ध्यान के लिए एक कर्मस्थान, पाली में कम्मत्थान अर्थात आलंबन या विषय वस्तु की आवश्यकता थी, तथा किसी से उसकी पद्धति सिखाने के लिए निवेदन करना था। अतः वे एक वन विहार में गए जिसमें 30 भिक्षु रहते थे और औपचारिकता के अनुसार उन्होंने संघस्थविर अर्थात श्रेष्ठतम भिक्षु को प्रणाम किया और कहा, भंते कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। किंतु महाथेर ने उत्तर दिया, आयुष्मान आप स्वयं एक उपदेशक हैं, यह तो मैं हूं जिसे आपसे सीखना चाहिए। तब पोटिल ने कहा, भंते कृपया ऐसा मत कीजिए, कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। ऐसा था कि इस विहार में सभी 30 भिक्षु पूरी तरह जागृत अर्थात अरहत थे और वे भी पोटिल की समस्या को समझने में सक्षम थे। अतः महास्थवीर ने सोचा, अपने ज्ञान के कारण इस भिक्षु में अत्यधिक गर्व है। अतः उन्होंने पोटिल को अपने अनुस्थवीर के पास भेजा जो वरिष्ठता में द्वितीय थे। द्वितीय भिक्षु ने पोटिल को अपने से कनिष्ठ भिक्षु के पास भेजा और इसी तरह यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक अंत में वे एक 7 वर्षीय श्रामणेर के पास नहीं पहुंच गए जो अपने दिवाकक्ष में बैठे कुछ सिलाई कर रहे थे। प्रत्येक अस्वीकृति पोटिल के स्वाभिमान पर बहुत बड़ा प्रहार थी, यहाँ तक कि 7 वर्षीय श्रामणेर ने भी जो स्वयं अरहत थे पोटिल का अनुरोध पहले अस्वीकार कर दिया, किंतु अंत में बोले, भंते यदि आप धैर्यपूर्वक अनुशासन शाम करें तो मैं आपको शरण प्रदान करूँगा। पोटिल का उत्तर था, सत्पुरुष मैं वैसा ही करूँगा, यदि आप मुझे आग में प्रवेश करने के लिए कहेंगे तो मैं उसमें भी प्रवेश करूँगा। श्रामणेर ने देखा कि पोटिल बहुत ही मूल्यवान वस्त्र पहने हुए हैं और उनसे बोले, भंते आप अपनी पूरी पोशाक में इस पानी के सरोवर में कूद जाए। पोटिल तब पानी में कूद गए। जब श्रामणेर ने देखा कि स्थविर के वस्त्र से पानी टपक रहा है तो उन्हें अपने पास बुलाया। पोटिल परीक्षा में सफल हो गए थे और उन्होंने यह सिद्ध कर लिया था कि उनका मन अब निर्देशों को समझने तथा उनके पालन के लिए पर्याप्त लचीला हो गया था। श्रामणेर ने कहा, भंते यदि कोई 6 छेद वाली बलमीक या बॉम्बी हो और जिसके किसी छेद से एक गोधा अर्थात गोह अंदर चली गई हो तथा कोई व्यक्ति उस गोधा को पकड़ना चाहता हो तो वह 5 छेदों को बंद कर एक छेद खुला रखेगा, इस प्रकार वह गोधा को पकड़ सकेगा। आपको भी इंद्रियों के 6 द्वारों से निपटने के लिए वही करना चाहिए। 6 में से 5 द्वारों को बंद कर अपना ध्यान मन के द्वार पर समर्पित कर दीजिए। पोटिल ने कहा, महोदय इतना पर्याप्त है। चूंकि वे इतने विद्वान थे कि श्रामणेर के शब्द उनके लिए किसी के दीप प्रज्वलित करने के समान थे, अतः उन्होंने अपने शरीर में ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। भगवान बुद्ध ने पोटिल को ध्यान लगाने का अभ्यास करते देखा और अपने मन में सोचा, इस भिक्षु को स्वयं को इसमें स्थापित करना होगा जिससे कि वह महान ज्ञानी बन सके। बुद्ध ने अपना एक जगमग प्रतिरूप भेजा और वह गाथा कही जो इस प्रवचन के आरंभ में दी गई है। इस गाथा से पोटिल के हौसले में अथाह वृद्धि हुई, जिसकी उनको अत्यंत आवश्यकता थी। गाथा के समापन पर वे पूर्ण रूपेण जागृत अर्थात अर्हत हो गए। तो हम इस कथा से देख सकते हैं कि छात्र के लिए विनम्रता कितनी महत्वपूर्ण है, और यह भी देख सकते हैं कि एक योग्य आचार्य प्राप्त करना भी कितना आवश्यक है। इस कथा में आचार्य एक 7 वर्षीय श्रामणेर थे, किंतु वे पूर्ण रूपेण जागृत थे, और चूंकि वे जागृत थे इसलिए उनमें किसी अत्यंत शिक्षित भिक्षु से भी अधिक समझ थी। विश्वास पर एक टिप्पणी। इन प्रवचनों से संबंधित यहाँ हम एक टिप्पणी जोड़ना चाहते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित हम आपको कई कथाएं सुनाएंगे, और ऐसी अनेक घटनाएं होंगी जिन पर आपके लिए विश्वास करना कठिन हो। जैसे एक अमरीकी शिष्या को उच्चतम ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम नरक तक के 31 लोकों के विषय में समझाते हुए सयाजी उबाखी ने बताया था, जब मैं इन लोकों के विषय में बात करता हूँ तो मेरा अर्थ यह नहीं होता कि आप इनमें विश्वास करें। हो सकता है कि आप स्वर्ग एवं नरक के अस्तित्व पर विश्वास करती हों, किंतु जब आपकी मानसिक शक्ति उस स्तर तक विकसित हो जाएगी कि आप द्वार खोलकर सभी 31 लोकों के प्राणियों को देख पाएंगी, तब आपको मेरे विवरण पर विश्वास हो ही जाएगा। मैंने कई व्यक्तियों को ऐसा देखने के लिए प्रशिक्षित भी किया है, आप समझ रही हैं ना, तब आपको विश्वास होगा। सयाजी उबाखी ने यह भी कहा, जब तक उन्हें स्वयं अनुभव ना हो या जब तक उन्हें साक्षात दिखाई न पड़ जाए, तब तक मैं किसी से किसी बात पर विश्वास करने के लिए नहीं कहता। अतः आप यहाँ मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए नहीं है। बुद्ध ने कहा है, मुझ पर भी विश्वास मत करो, आप स्वयं अनुभव करें और पता लगाएं कि क्या आपका अनुभव अच्छा है तथा आपके लिए कल्याणकारी है। यदि यह आपके लिए कल्याणकारी है तो आप इसे ग्रहण कर सकते हैं, यदि आपके लिए कल्याणकारी नहीं है तो आप इसे नहीं ग्रहण करेंगे। अतः यहाँ पर सारा प्रशिक्षण अनुभव के माध्यम से ही होगा। सयाजी उबाखी ने इसी प्रकार लोगों को प्रशिक्षित किया तथा उसी प्रकार हम भी यहाँ लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, किंतु यह आवश्यक है कि शिक्षा सही तरीके से हो और बुद्ध ने जो सिखाया उसके प्रति हम निष्ठावान बने रहें। इसीलिए धर्म ग्रंथों की कथाओं के दृष्टांतों द्वारा प्रवचनों को स्पर्श करते समय हम यथासंभव उनके मूल स्वरूप के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे। यदि हम उनके कुछ भागों को केवल इसलिए निकालने लगे कि हमें भय है कि छात्र हर बात पर विश्वास नहीं करेंगे, तो हम इन शिक्षाओं को विकृत कर देंगे। पुक्कु साती की कथा। यह एक और कथा है जो आचार्य तथा शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण को चरितार्थ करती है। धातु विभंग सूत्र पर टिप्पणी करते हुए आचार्य बुद्धघोष ने सम्राट बिंबिसार के समकालीन तक्षशिला अर्थात गांधार के राजा पुष्कर सरिन पाली में पुक्कुसाति का विवरण प्रदान किया है। इन दोनों नरेशों के बीच एक मैत्रीपूर्ण गठबंधन स्थापित हो गया था, और एक समय पुक्कुसाति ने उपहार स्वरूप अमूल्य आभूषणों से भरी रोगन की हुई 8 मंजूषाएं अर्थात पेटियां भेजी। चूंकि बिंबिसार के विचार में भेजने युक्त कोई भी अन्य सामग्री उतनी मूल्यवान नहीं थी, उन्होंने पुक्कुसाति को इस विश्व में त्रिरत्न अर्थात बुद्ध धम्म और संघ के उदय से परिचित कराने की कल्पना की। उन्होंने चार बाहु लंबे और एक बित्ता चौड़े स्वर्ण पट पर त्रिरत्न तथा बुद्ध की शिक्षा के अन्य सिद्धांतों जैसे सती या जागरूकता पर प्रवचन, अष्टांगिक आर्य मार्ग, जागृत के 37 घटक अर्थात बोधिपक्षीय धम्मा का वर्णन खुलवाया। जब राजा पुकुसाति ने उस स्वर्ण पट पर इन शिलालेखों को पढ़ा तो वे असीम आनंद से गदगद हो गए और उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय लिया। अपना सर मुड़वाकर और सन्यासी के पीले वस्त्र पहनकर उन्होंने अपना महल छोड़ दिया। फिर उन्होंने श्रावस्ती तक की एक लंबी यात्रा जेतवन द्वार के बाहर बाहर तय की, क्योंकि उन्होंने अपने मित्र के पत्र से यह समझा था कि बुद्ध राजगृह में होंगे, इसीलिए वे जेतवन में पूछे बिना ही राजगृह के लिए चल पड़े। पुकुसाति ने, जो विधिवत उपसंपदा प्राप्त कर पूर्ण रूप से भिक्खु नहीं बने थे, एक रात एक कुम्हार की झोपड़ी में बिताई। बुद्ध अपने दौरे पर थे और उन्होंने उसी झोपड़ी में रहने की अनुमति मांगी। उन्हें भी अनुमति मिली। बुद्ध को लगा कि यह युवा व्यक्ति सुहावने व्यवहार वाला है तथा उससे पूछा कि उसने संन्यास क्यों लिया है और उसके आचार्य कौन थे। पुकुसाति ने कहा कि उन्होंने अपना गार्हस्थ्य जीवन गौतम बुद्ध के कारण त्याग दिया था। बुद्ध ने पुकुसाति से पूछा कि क्या वे गौतम बुद्ध से कभी मिले हैं, और पुकुसाति ने कहा नहीं। तब बुद्ध ने उनसे पूछा कि यदि वे बुद्ध से मिले तो क्या उन्हें पहचान पाएंगे। पुकुसाति ने उत्तर दिया नहीं। बुद्ध ने अपने मन में विचार किया, एक सम्मानित परिवार से इस युवा व्यक्ति ने मेरे कारण संन्यास लिया है, मानो मैं इसे धर्म की शिक्षा देता हूँ। अतः उन्होंने उनसे कहा, भिक्खु मैं आपको धर्म की शिक्षा दूंगा, कृपया मन लगाकर ध्यान से सुनिए मैं बोलता हूँ। और पुकुसाति ने कहा, अच्छा मित्र। बुद्ध ने पुकुसाति को एक विस्तृत धर्मोपदेश दिया और उस उपदेश के अंत में पुकुसाति को महसूस हुआ कि वे स्वयं बुद्ध को ही सुन रहे थे। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और उनसे कहा कि वे कृपया उनकी क्षमा याचना स्वीकार करें कि उन्होंने उनको अर्थात बुद्ध को मित्र, जिससे तात्पर्य निकलता है कि वे दोनों समान स्तर के हैं, शब्द से संबोधित करने की त्रुटि की थी। पुकुसाति अब ऐसी गलती दोहराने से बचेंगे। बुद्ध ने इसे स्वीकार किया। पुकुसाति ने तब बुद्ध की उपस्थिति में उपसंपदा प्राप्त करने अर्थात भिक्खु बनने का अनुरोध किया। यदि पुकुसाति ने अपने अतीत में अपने आप को परिपूर्ण कर लिया होता तो बुद्ध उन्हें एहि भिक्खु, भिक्षु आओ कहकर उपसंपदा दे देते और संघ में सम्मिलित कर लेते, किंतु पुकुसाति के पास प्रव्रज्ञा के लिए चीवर तथा पात्र नहीं था। अतः बुद्ध ने पहले इन सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए कहा। जब वे इनकी तलाश कर रहे थे, एक गाय ने उन्हें मार डाला। कई भिक्षुओं ने बुद्ध से पूछा कि मृत्यु के बाद पुकुसाति का क्या हुआ, तो बुद्ध ने कहा, चूंकि वे जागृति के तीसरे अर्थात अनागामी चरण में पहुंच गए थे, पुकुसाति अब उच्च स्तरीय लोकों में से एक में थे और उस लोक से कभी भी वापस आए बिना ही वे पूर्ण जागृति अर्थात निर्वाण, पाली में निर्वाण प्राप्त कर लेंगे। आप देखेंगे कि पुकुसाति को यह जानने की आवश्यकता नहीं थी कि उनसे कौन बात कर रहा है। उन्होंने एक खुले दिमाग से पूरा ध्यान देकर सत्य और धम्म के विषय में सुना और स्वयं सत्य का साक्षात्कार करने में सक्षम हो गए। ऐसा ही दृष्टिकोण आपका भी होना चाहिए। हमारे काम में अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है। जब हम श्रद्धा की बात करते हैं तो हमारा भाव आत्मविश्वास से होता है और हमारा आत्मविश्वास हमारे अनुभव पर निर्भर करता है। प्रारंभ में हमें कम से कम उतने आत्मविश्वास की आवश्यकता है जिससे हम इस तकनीक का निष्पक्ष परीक्षण कर सकें और शीघ्र ही हमें स्वयं पता चल जाएगा कि यह शिक्षा सच्ची कल्याणकारी एवं लाभदायक है या नहीं। हम चीजों पर प्रायः सूचक पत्र अर्थात लेबल लगा देते हैं जिससे उन्हें ठीक से समझने में कठिनाई होती है। धार्मिक विषयों में ऐसा विशेष रूप से होता है, किंतु सभी धर्म नैतिकता की आवश्यकता को स्वीकारते हैं। यहाँ तक कि जो लोग किसी धर्म में प्रशिक्षण की अपेक्षा व्यक्तिगत दर्शन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं वे भी नैतिकता की आवश्यकता को समझते हैं। धर्मों में ध्यान के विकास की आवश्यकता भी मानी जाती है जिससे चित्त को एकाग्रता एवं समभाव की अवस्था प्राप्त हो सके। जैसा कि सयाजी उबाखी ने बौद्ध धर्म है क्या व्हाट बुद्धिज्म इज में कहा है, यहाँ चित्त सभी निवरणों या बाधाओं से मुक्त होकर शुद्ध शांत तथा भीतर और बाहर दोनों ओर से प्रकाशित हो जाता है। ऐसी अवस्था में मन शक्तिशाली एवं उज्ज्वल हो जाता है। यह प्रकाश जो मन की आँखों के समक्ष पूर्ण अंधेरे में परिलक्षित होता है वह पवित्रता शांति तथा मन की धीरता की अभिव्यक्ति है। इसे प्राप्त करने के लिए हिंदू अथक परिश्रम करते हैं क्योंकि प्रकाश से शून्य में जाकर वापस आना वास्तव में ब्राह्मीय है। न्यू टेस्टामेंट के बुक ऑफ मैथ्यू में प्रकाश से पूर्ण शरीर की बात कही गई है। रोमन कैथोलिक पादरियों को इस चमत्कारी प्रकाश के लिए नियमित रूप से ध्यान लगाने के बारे में भी हम सुनते हैं। कुरान भी दिव्य प्रकाश की अभिव्यक्ति को प्रमुखता प्रदान करता है। प्रकाश का यह मानसिक परिलक्षण अंतर्मन की पवित्रता का द्योतक है और मन की पवित्रता ही धार्मिक जीवन का सार है। चाहे कोई भी हो, बौद्ध, हिंदू, ईसाई या मुसलमान, मन की पवित्रता ही वास्तव में सभी धर्मों का सबसे बड़ा आम भाजक अर्थात हर या डिनोमिनेटर है। समथ पाली में समथ या प्रशांति एवं अंतर्दृष्टि। चूंकि हमने नैतिकता के अभ्यास का संकल्प लेकर एक पहला कदम उठाया है, हमारे काम के दो पहलू हैं समथ ध्यान तथा अंतर्दृष्टि या विवेकपूर्ण ध्यान या भावना। मानसिक विकास की ये दो शाखाएं हैं। इन दो प्रकार के ध्यान से हमें उत्कृष्ट लाभ मिल सकता है। एकाग्रता एवं समथ से हम अपना मानसिक विकास करते हैं और जब हमारा मानसिक विकास होता है तो हम सारी लालसा या तृष्णा का परित्याग कर देते हैं। अंतर्दृष्टि ध्यान के माध्यम से हम विवेक का विकास करते हैं और विवेक के विकास से हम अज्ञान का त्याग करते हैं। प्रशांति या समथ मन की एक स्थिर शांतिपूर्ण तथा आभायुक्त अवस्था है जो उच्च कोटि की चित्त एकाग्रता द्वारा प्राप्त की जाती है। पहले 5 दिनों में हम इसी के लिए काम कर रहे हैं। अंतर्दृष्टि के विकास के लिए उच्च स्तर की शांत एकाग्रता अपरिहार्य है। इनका उपयोग समाधि या ध्यान पाले में ध्यान में प्रवेश करने के लिए संभव है, किंतु यह ध्यान हमारे लिए आवश्यक नहीं है। जब हमारा चित्त पर्याप्त रूप से शांत एवं केंद्रित अवस्था तक पहुंच जाता है तब हम अंतर्दृष्टि का विकास कर सकते हैं। यह समथ या प्रसब्धि पाली में पसब्धि मन को दोष एवं आंतरिक बाधाओं से मुक्त करती है तथा उसे अपार वेधक शक्ति प्रदान करती है। समथ में ऐसी शक्ति है जिससे हमारा चित्त एकाग्र तथा स्थिर हो जाता है, क्योंकि हम सभी काम छंद एवं द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। यह हमें प्रकाश के बोध की ओर तथा तथ्यों या प्रक्रियाओं की परिभाषा की ओर एवं ज्ञान और आनंद की ओर अग्रसर करता है और हमें उच्च स्तरीय ध्यान लगाने के लिए तैयार करता है। अंतर्दृष्टि अर्थात विपश्यना, पाली में विपश्यना, प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से नश्वरता या अनित्य, पाली में अनिच्य, असंतोष अथवा दुख तथा अस्तित्व के सभी भौतिक एवं मानसिक तथ्यों या प्रक्रियाओं में अनात्म, पाली में अनत्ता की भेदक जानकारी है। यह अंतर्दृष्टि ही है जो जागृति की इंद्रियातीत या पारलौकिक अवस्थाओं में प्रवेश के लिए एवं अंतिम मुक्ति के लिए अग्रसर करती है। किंतु हम इन प्रवचनों में आगे चलकर अंतर्दृष्टि अर्थात विपश्यना के विषय में और विस्तार में जाएंगे। इस समय हमारी प्राथमिकता एकाग्रता के विकास की है। शिक्षा तथा आचार्य के प्रति उचित दृष्टिकोण के दृष्टांत के लिए हमने पुक्कुसाति का संक्षिप्त विवरण दिया और हमने देखा कि बुद्ध द्वारा दिए गए एक विस्तृत प्रवचन को सुनने के बाद वे फल पद के तीसरे अर्थात अनागामी चरण में स्थापित हो गए। किसी भी व्यक्ति के लिए फल पद की अवस्थाएं प्राप्त करना तब तक आसान नहीं है जब तक कि अतीत में जागृति की सभी आवश्यक तैयारियां पूरी न कर ली गई हों। आज प्रातः बस इतना ही। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु।